नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुपौल जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधान मंडलों का योगदान। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि उद्घाटन समारोह विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा, जबकि पूर्ण सत्र विधानसभा के भीतर होगा। श्री यादव ने कहा कि समारोह में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जाएगा।
संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसको लागू करने में विधानसभा संसद की भूमिका, इस विषय पर लोगों के विचार आएंगे, लोग अब चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, ये मुख्य रूप से विषय है। लोगों ने एक वृत्त बनाया है जिसमें बिहार के हेरिटेज और बिहार के विकास का दोनों को समाहित किया है। सारे प्रतिनिधियों को हम दिखाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हम बिहार के विभिन्न पहलुओं की चर्चा दिखाएंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समापन समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। समारोह में लगभग 300 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।
बिहार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। इससे पहले यह सम्मेलन 1982 में बिहार में आयोजित हुआ था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि 2 सदनों वाले और 317 सदस्यों वाले बिहार विधानमंडल के लिए यह बड़ा आयोजन करना गौरव की बात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेंगे। वहीं पूर्ण सत्र दोपहर में विधानसभा के वेस्ट में आयोजित होगा। लगभग 300 प्रतिनिधि पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं, जिसमें देश भर के विधानसभाओं, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति शामिल हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
सम्मेलन के दौरान आज लोकसभा अध्यक्ष बिहार विधानमंडल परिसर में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे और संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के 8वें संस्करण का लोकार्पण करेंगे। इधर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से पहले कल देर शाम विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन हुआ। इसमें प्रतिनिधियों ने कार्यकुशलता के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने समेत कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की कार्यवाही का आकाशवाणी पटना सीधा प्रसारण करेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल और FM रेनबो पर उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्र ने पटना में रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच 6-लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर आमस दरभंगा राजमार्ग परियोजना के दूसरे चरण के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 1083 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं किशनगंज जिले में NH 27 और NH 327E को जोड़ने के लिए स्पर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण किशनगंज और बहादुरगंज के बीच होगा। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर होगी और इस पर 1117 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समाचार कक्ष कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वे 134 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 52 योजनाओं का उद्घाटन और लगभग 164 करोड़ रुपए की 150 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार जिले के बिजलपुर पुनर्वास टोला में आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और तालाब के जीर्णोद्वार कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे सुपौल में नवनिर्मित टाउन हॉल और सुधा डेयरी प्लांट के विस्तारित संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों तथा स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। इसमें पूर्व निर्धारित शुल्क यानी 7.42 रूपए प्रति यूनिट की दर से ही बिजली बिल लेने का प्रस्ताव है। इस दर पर अनुदान मिलने के बाद उपभोक्ताओं को मात्र 2.45 रूपए प्रति यूनिट बिजली बिल देना होगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद 50 यूनिट से अधिक खपत पर उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव भी दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों का प्रोफाइल अद्यतन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आसान कर दी है। आधार से अभी प्रमाणित खाता संख्या वाले सदस्य अपनी संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि संशोधन से तात्कालिक रूप से 3,90,000 सदस्यों को फायदा होगा जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में लंबित हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इधर आज राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह से ही अच्छी धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है। हालांकि पछुआ हवा के प्रभाव से लोगों को अभी भी कनकनी महसूस हो रही है। पश्चिम चंपारण जिले के लौड़िया थाना क्षेत्र के मठिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। इस बीच नरकटियागंज के अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 2 लोगों की मौत दमे की बीमारी और लकवा से हुई है, 3 की मौत कोल्ड डायरिया से, जबकि 1 व्यक्ति की मौत शराब पीने की लत और फेफड़ा खराब होने से हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।
किसी भी मामले में शराब के मामले की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हमारा पूरा तंत्र मजबूत है और सतर्क है। वहाँ पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। लोगों को भी हमने बताया है कि कोई भी बीमार पड़ते हो या किसी भी तरह की घटना घटित होती है जहाँ पर प्रशासन की या स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता है, हमें सूचित करें। हम लोग वहाँ रह रहे हैं और देख रहे हैं।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दिसम्बर महीने के प्रदर्शन के आधार पर सभी अंचलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले के पारू अंचल को पहला स्थान मिला है। वैशाली जिले का पातेपुर दूसरे और बांका का फुली डूमर अंचल तीसरे स्थान पर है। वहीं पटना का बीटा अंचल इस सूची में सबसे अंतिम पायदान पर है। प्रदेश में अब तक 19 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हुई है। यह निर्धारित लक्ष्य से 26 लाख टन कम है। राज्य के सरकारी क्रय केंद्रों पर 15 जनवरी तक धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सिर्फ 6 जिलों में ही निर्धारित लक्ष्य के 50% धान की खरीद हुई है। राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से अपराधियों ने 20 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की है। इस संबंध में सांसद ने पटना सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि अपराधियों ने उनसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी की मांग की, पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। एसडीपीओ डॉक्टर अनु ने बताया कि जिस नंबर से फोन आया है उसकी जांच की जा रही है। बेगूसराय जिले के पखड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राणपुर गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने हमला कर दिया। इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही असामाजिक तत्वों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि घायल लोगों और पुलिसकर्मियों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। टीम इंडिया ने पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय टीमों ने खिताबी मुकाबले में फुर्ती, बेहतर रणनीति और शानदार खेल कौशल दिखाया। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ फाइनल मैच 54-36 के स्कोर से जीता। वहीं भारतीय महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 के बड़े स्कोर से पराजित किया। महिला टीम में भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के टीमा गांव की मोनिका भी शामिल थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला और पुरुष टीम को खो खो विश्व कप जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केवल गया रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन पर पिछले दिनों पत्थरबाजी करने के मामले में नवादा आरपीएफ ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती होगी बिजली। दैनिक जागरण की सुर्खी है महाकुंभ क्षेत्र में आग की लपेट में आए 200 से अधिक टेंट, आधे घंटे में काबू। प्रभात खबर ने पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार में 43 साल बाद आज जुटेंगे देशभर के विधानसभा अध्यक्ष। दैनिक भास्कर लिखता है कटिहार में 9 हादसा, 15 की क्षमता वाली 9 पर 18 लोग थे, तेज हवा से गंगा में डूबी 3 की मौत। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है आज से ट्रंप योग, अमेरिका को आशा, दुनिया को आशंका। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं आज से पटना में खुलेंगे 8वीं तक के विद्यालय। आज अखबार लिखता है राज्यसभा सदस्य से मांगी गई 20 करोड़ की रंगदारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुपौल जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।